إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. پچھلے درس میں ہم نے قواعد اسلام اس کورس کا دوسرا حصہ شروع کیا تھا. پہلا حصہ عقیدے سے متعلق تھا اور اس کا امتحان بھی ہو چکا ہے اور 36 اسٹوڈنٹس اس میں شریک تھے اور امید ہے کہ سب پاس ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ بہت اچھی علامت ہے کہ 30 سے زائد لوگ اس میں شریک ہوئے اور امید ہے کہ اگلے امتحان میں اس سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے. اس لیے کہ کچھ لوگ ڈر رہے تھے کہ معلوم نہیں امتحان کیسا ہوگا, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس میں شریک تھے ان کو احساس ہوا ہوگا کہ اتنا مشکل پرچہ نہیں ہے. اب ہم اس دوسرے حصے میں, یہ اس کا دوسرا درس ہمارا ہے, کتاب و سنت کی اتباع, فضیلت اور اہمیت. اس میں ہم نے پچھلے درس میں کچھ نکات دیکھے تھے. نمبر ایک, آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایت کے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پاس ہدایت بھیجوں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, جس کے پاس میری ہدایت آئے گی اور تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں انسان ایسا نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جو چاہے کرے, بلکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رہبری کا انتظام کیا ہے. دوسرے, اس رہبری کی پیروی اگر آدمی کرتا ہے, اللہ کے گائیڈنس کو فالو کرتا ہے, تو آخرت کی زندگی میں خوف اور غم سے اس کو نجات مل جائے گی. سمپل فارمولا, کسی غیر مسلم کو آپ بات کر رہے ہیں, آپ یہ آیت پڑھ کے اس کو سمجھاؤ کتنی اچھی آیت ہے. ہر آدمی کیا چاہتا ہے, ایک ایسی زندگی جس میں خوف نہ ہو, ٹینشن غم کیا ہوتا کیا نہیں, ڈر آگے کیا ہوتا, اور ایسی زندگی جس میں غم نہیں. تو خوف اور غم سے پاک زندگی اگر کسی انسان کو چاہیے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے, اللہ کے گائیڈنس کو ایکسیپٹ کر لینا, فالو کرنا, جو اللہ نے بولا وہ کرنا, بس ایک ایسی زندگی ملنے والی جس میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. تو یہ پہلی بات ہے. تو کامیابی اللہ کی بات ماننے میں ہے, اللہ کی ہدایت کے تسلیم کرنے میں ہے. نمبر دو, ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی رہبری کی اتباع کرے. ایسا نہیں کہ آپشن ہے, چاہے تو کرو چاہے تو مت کرو, ایسا نہیں ہے. جو دین اللہ نے بھیجا ہے انسان کے پاس, اس کے سوا کوئی چارہ, کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ دین چھوڑ کے کچھ اور بھی کرے, نہیں, آپشن اس کو کرنا ہی پڑے گا اس کو. تو اس میں ہم نے کچھ آیتیں دیکھی تھی. نمبر تین, اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت صرف قرآن نہیں ہے, بلکہ قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. قرآن کی تفسیر کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. آپ نے اپنی قول سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے قرآن کے احکام کو واضح کیا ہے. تو جہاں قرآن اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے, وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی سنت, یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس سے دین لیں. اتنا ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں, اب ہم آگے بڑھیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ و رسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلك خیر و احسن تاویلا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے, اب دوسرا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں, کیا فصل ہے؟ اللہ اور اس کے فیصلے کو قبول کرنا, اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول کرنا, یعنی جو ہم کو دیا گیا اس کو ماننا پڑے گا. اس میں پانچ پوائنٹ ہیں, میں ترتیب اس کی الگ کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. پوائنٹ نمبر دو کو میں پوائنٹ نمبر ایک دے رہا ہوں, آپ ترتیب یاد رکھیے تاکہ سمجھانے میں آپ کو آسانی ہو. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. کیا مطلب پوائنٹ نمبر دو کیا ہے؟ ہر وہ چیز لینا جو نبی لے کر آئے, یعنی دین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دین دیا, پیج نمبر 42 پر, 42 42 پر پوائنٹ نمبر دو مل گیا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی دین دیا, اب آدمی اسے کر سکتا ہے, یہ بہت اچھا لگ رہا میں لیتا ہوں, یہ اچھا نہیں لگ رہا میں نہیں لیتا, کر سکتا ہے. اللہ نے جو اپنا دین دیا وہ ڈائریکٹ ہم کو دیا, کس کے پاس دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ہم کو بتائیں, عقیدے کی, عبادات کی, معاملات کی, اخلاق کی, معاشرتی آداب کی, پچھلی قوموں کے واقعات, غیب کی خبریں, قیامت کے بارے میں بہت کچھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت کچھ دیا, اب اس میں سے کیا ہم کو اختیار ہے, ہم کچھ لیں کچھ نہیں لیں؟ دلیل کیا ہے؟ نہیں ایسا اختیار ہے اس کی, یہی ہے, ہاں یہی دلیل ہے کہ ہم کو اللہ نے کیا حکم دیا. وما, ما جو کچھ, آتا کم, آتا دینا, کم تم کو, جو کچھ دے تم کو کون؟ اور رسول, یہ رسول, الف لام جو آ رہے ہیں یہاں پر کس لیے ہے؟ یہ رسول, یہ رسول جو کچھ تم کو دیں, فخذوه تو اسے لے لو, فخذوه تو لے لو تم سب اس کو, کس کو؟ جو رسول تم کو دے. تو جو کچھ رسول نے دیا وہ کیا کرنا پڑے گا؟ لینا پڑے گا. کبھی رسول دین کے بارے میں کوئی بات ہم کو بتائیں گے اس کو لینا پڑے گا, ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ کبھی رسول کسی کو مال دیں گے, کچھ لوگ کیا بولتے ہیں, نہیں یہ آیت مال دینے کے بارے میں, قرآن میں تو نہیں مال دینے کے بارے میں, قرآن میں کہا گیا جو کچھ دیں وہ لے لو. تو چاہے رسول مال دے, مال دینا پڑے گا, حکم دے اس کو ماننا پڑے گا, کوئی خبر دیں اس کو بھی لینا پڑے گا. تو چاہے دنیا کی کوئی چیز دیں یا دین کی, کوئی خبر دیں یا کوئی حکم دیں, سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا, ایکسپٹ کرنا پڑے گا, لینا پڑے گا اس کو, اس کا انکار کرنا جائز ہے؟ نہیں. وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ یہ رسول تم کو دیں اسے لے لو. اور وما, اور جو کچھ نہاکم تم کو منع کریں, عنہ جس کسی چیز سے, جس سے بھی یہ رسول تم کو منع کریں, فانتہوا तो उससे बाज आ जाओ, उससे रुको। ये दो बातें कुरान करीम में अल्लाह ने यहां पर बताई। तो इससे एक बात मालूम हुई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजें शरीयत की हमको दी, उसको क्या करना पड़ेगा, करने के काम करने हैं, और कुछ चीजों से मना कर दिया। तो अब जिससे मना कर दिया क्या करना पड़ेगा, उससे रुकना पड़ेगा। तो इस आयत से एक बात ये मालूम हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, ये जो कुछ दें ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। इस आयत का बहुत अच्छा इस्तिदलाल के लिए इस्तेमाल आप कहां कर सकते, बिदात में, कि बिदात चालू करना चाहिए, यानी क्या वजाहत वो करें, खुद करें। फिर बिदात का इसमें रद्द कहां से आ रहा, बिदात तो जो कर दिया वो ले रहे हैं पर ऐड भी कर रहे हैं, तो ये एडिशनल होती है ना बिदात, तो उसका रद्द है क्या इसमें, इसको इसका कहां बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इत्तिबा में, जो किताब हो किताब सुन्नत के, यानी कैसा, तो पूरे सबक का नाम है वो, कैसा बोलने आना चाहिए हम, इसमें तो नहीं हो बात है, इसमें ये जो रसूल दे वो ले लो, नंबर एक याद रखिए। अभी इसमें मुनकिरीन हदीस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर एक, और कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, जो लोग बोलते हैं हम कुरान लेंगे हदीस, इसमें क्या है, कुरान की आयत है, ठीक है, वो भी कुरान मानते हैं, हम भी मानते हैं। अभी समय क्या बता है, जो भी रसूल दें उसे, रसूल ने खाली कुरान दिया, हदीस दी कि नहीं, तो फिर कुरान भी लेना पड़ेगा, और तो इस आयत से मालूम है जो रसूल दें उसको ले लो। तो इसमें यह नहीं कहा जो कुरान रसूल दे उसको ले लो, जो कुरान से हट के दे वो मत लो, ऐसा है इसमें है कि जो दे वो ले लो, यानी अल्टीमेट ये जो दे रहे ले लो। तो रसूल के ऊपर छोड़ दिया गया, रसूल की हर चीज लेनी पड़ेगी, तो कुरान भी और कुरान की तफहीम जिसको सुन्नत या हदीस हम कहते हैं वो भी लेना पड़ेगा। और दूसरा वमा नहाकुम अन्हु, ऐसा है कि ये जो कुरान की आयत पढ़ के बताया कि ये मना है उससे रुको, ऐसा है जिससे मना कर दें, तो अगर कोई चीज कुरान में मना नहीं है, उसके बारे में कुछ मना की आयत है ही नहीं, न करने के बारे में कुछ है कुरान में जिसका जिक्र ही नहीं, अगर ऐसी किसी चीज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करें, तो मना है वो, तो कुरान में नहीं है ना वो, लेकिन समझ में आ रहा है, ये बहुत जरूरी है, ये आयत इतनी आपने याद कर ली तो मुनकिर हदीस के गले पे आप हर वक्त सवार रहोगे, इसमें है क्या कुरान में, वो कैसा करते हैं, कुरान में बताऊं, कुरान के बाहर का नहीं चाहिए हदीस, हमको उसको दलील नहीं चाहिए हदीस। तो आप याद पकड़ लें, जो कुछ रसूल दें बोलेगा नहीं ये माल बांटने के बारे में, उसमें इसमें किधर है माल, जो कुछ खाली माल है, माल के सिवा भी तो है इसमें, तो जो माल दें ऐसा है, जो माल दें ऐसा है, जो कुछ, तो जब अल्लाह ने सब के बारे में बयान किया, सब के बारे में हम माने, तेरा एक्सप्लेनेशन हम नहीं मान रहे, तू नबी का नहीं मानता हम तेरा मानेंगे, समझ में आ रही बात, मुनकिर हदीस को हम कहेंगे तू तेरा एक्सप्लेनेशन हमको कुरान की आयत का मानने बोल रहा है, और हम तेरे को नबी का दे रहे तू वो नहीं मानता, नबी पढ़ा कि तू पढ़ा, तेरा क्यों लेंगे हम कुरान की आयत के अल्फाज लेंगे, जो कुछ रसूल दें उसको ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तो कोई हुक्म अगर कुरान में नहीं है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं तो लेना पड़ेगा, मिसाल कोई है ऐसी, मुर्दार का गोश्त कुरान में मना है, और उसमें से इस्तिस्ना मछली मरी हुई खा सकते कि नहीं, कि उसको ज़िबा करेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, मछली खा सकते हैं, खा सकते हैं, उसको ज़िबा करने की जरूरत नहीं। ऐसे कई अहकाम हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं जो कुरान में नहीं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इदा तवद्दअता फमद्मिर, जब तू वुजू करे तो कुल्ली कर लिया कर। तो कुल्ली करना चाहिए कि नहीं वुजू में? नबी ने हुक्म दिया हमको करना पड़ेगा, लाजिम है कुल्ली करना, लाजिम है। लेकिन कुरान में है कुल्ली करो नहीं। ऐसे कई अहकाम हैं, चाहे नमाज हो, वुजू हो, तहारत हो, और भी कई चीजें हैं उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, लेकिन वो कुरान में नहीं, तो मानना पड़ेगा कि नहीं? मानना पड़ेगा। ऐसी चीजें हैं जो कुरान में मना नहीं है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उसको। ऐसी मिसाल है कोई? सोना, सोना मना है? एक वर्ड में जवाब एकदम, कि आप तुम जो समझना समझ लो, हमने बोल दिया खत्म। क्या? गोल्ड, ये भी एक वर्ड है। सोना क्या? सोना खरीदना हराम है कुरान में? मर्दों के लिए खरीदना हराम है? इस्तेमाल करना हराम है? सोच के बोलो, इस्तेमाल नहीं कर सकते सोना? पहनना हराम है। मर्दों के लिए सोने का जेवर एकदम लीगल लैंग्वेज यूज करना चाहिए। आदमी कोई आप बोल दिए किसी को, ठीक है सोना हराम है ना, तुम्हारे पास सोना घर में रखना नहीं हराम है। एक आदमी सोने के जेवर पहन सकता है? नहीं पहन सकता। औरत पहन सकती है? ये तफरी कुरान में है? नहीं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द के लिए क्या कर दिया? हराम कर दिया। कब तक के लिए? 1900 कयामत तक के लिए, हमेशा के लिए हराम है। तो इस आयत से आपको एक बात यह समझ में आई। दूसरी बात यह कि जिंदगी के तमाम मामलात में एक आदमी को हुक्म दिया गया है, जो रसूल दें उसको ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। यानी अल्लाह ने मुसलमान को किसके ताबे कर दिया? तो कोई आदमी तफरीक नहीं कर सकता है, ये नहीं बोल सकता हम कुरान लेंगे हदीस नहीं लेते। उसको हर बात जो अल्लाह उसके रसूल से मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई बात है हमारे पीर साहब, कोई मौलवी साहब अगर बोल रहे हैं जो रसूल से टकराते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? रसूल के खिलाफ है तो छोड़ना पड़ेगा। तो ये आयत हमको मिलती है। नंबर दो, पेज नंबर 41, अगर किसी चीज में मुसलमानों में आपस में इख्तलाफ हो जाए, कोई बोल रहा है ये सही, कोई बोल रहा वो सही, अब ऐसी सूरत में, खुसूसन आज मुसलमानों में कई ग्रोह हैं और जाती जिंदगी में भी कई इख्तलाफात होते हैं, दीनी इख्तलाफात होते हैं, दुनियावी इख्तलाफात होते हैं, जायदाद के झगड़े हैं, हुकूक का झगड़ा है, बीवी शोहर, माँ बाप और दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, इनमें इख्तलाफात होते हैं, तो ऐसी सूरत में इख्तलाफात के बारे में, और जो कि वाजिबी चीजें, इंसानों में इख्तलाफात होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो ऐसी सूरत में इस्लाम का सोर्स ऑफ नॉलेज या हल का जरिया क्या है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो इसमें खिताब किनसे है? यहां पर खास तौर से बताएगा ईमान वालों, तो यानी ईमान है तुम्हारे पास, ये करना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, नंबर एक, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलाही व रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाही वल यौमिल आखिर। सही है। ऐमान वालो फरमा बरदारी करो, अतीउ आ गए यहां पे अल्लाह, और फरमा बरदारी करो रसूल की, और उलुल अम्र की भी जो तुम में से, मिनकुम तुम में से। यहां एक अजीब बात है कि यहां पर नंबर एक अल्लाह की मानो, नंबर दो अल्लाह के रसूल की, और नंबर तीन किसकी, उलुल अम्र। अम्र यानी मामला, हुक्म, इख्तियार। तो इख्तियार वाले, हुक्म देने की, जैसे मुसलमानों का गवर्नर है, खलीफा है, या बड़ा काजी है, बड़ा मुफ्ती है, आलिम है, ये सब क्या है, उलुल अम्र है, जिनके पास लोग फैसले के लिए जाते हैं, जो लोगों को बोलते हैं ऐसा करो ऐसा मत करो। तो मुसलमानों में अथॉरिटी वाले जो लोग होते हैं, तो दो किस्म के होते हैं, एक उलमा और दूसरे हुक्काम, हाकिम, हाकिम जिनको बोलते हैं, उमरा जिनको बोलते हैं। तो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और तुम में से जो मामले का इख्तियार रखते हैं उनकी मानो। तो कितने हुए टोटल, तीन। फइन तनाज़अतुम फी शै, फइन तो फिर अगर, तनाज़अतुम तुम में तनाज़ हो जाए, तनाज़ नाज़ा का मतलब होता है इख्तिलाफ करना, तनाज़ तुम्हें हो जाए, तुम्हें आपस में क्या हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, फी शैइन किसी चीज में, किसी एक चीज में भी, किसी भी चीज में, फी शैइन फरुद्दूहु तो पलटाओ, रुद्दू रद्दा पलटाना, हुआ रद्दुन पलटा देना, यानी कबूल नहीं करेगा अल्लाह ताला। हदीस में है ना, मन आमिल आमलन लैस अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, रद्द का मतलब होता है लौटाना, जैसे रद्दुस सलाम कहते हैं, कोई आपको सलाम करेगा तो आप क्या करोगे, सलाम का जवाब देते हो, तो अरबी में उसको रद्दुस सलाम कहते हैं, सलाम पलटाना, लौटाना। तो तुम उस मामले को पलटा दो, लौटा दो, किधर, इलाल्लाही वर रसूल, अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। कब, इन अगर, कुन तुम हो, तुमिनूना ईमान लाते, बिल्लाही अल्लाह पर, वल्यौमिल आखिर और आखिरत के लिए। अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटाओ, नहीं रखते जो करना है करो। ये इस अंदाज में है, जैसे कोई आदमी किसी को कहता है अल्लाह से डरता रहेगा तो ऐसा मत कर, या अगर तू अल्लाह से वाकई डरता है तो ऐसा कर। तो यहां पर अल्लाह और आखिरत पर ईमान याद दिलाकर कहा जा रहा है, देख अगर अल्लाह उसके रसूल, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो अपने आपस के झगड़े को फैसले के लिए कहां लौटाना पड़ेगा। इस आयत से कौन लोग दलील लेते हैं, जो लोग बोलते हैं एक इमाम के पीछे चलना जरूरी है, बोलते देखो तुम बोलते ना अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल, ये तीसरा कौन है, बोलते कि नहीं, ये तीसरे का क्या करेंगे। तो उलुल अम्र की भी तो मानना है ना, तो हम उलमा की मानने क्या गलत कर रहे हैं। तो कुरान में दलील है इसकी, कुरान में दलील है कि उलुल अम्र की बात मानना चाहिए। तुम लोग क्यों नहीं मानते, हम लोग मानते कि नहीं मानते, हम में से कोई आदमी आज तक बोला कि आलिमों की नहीं मानना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती की तोहमतें बहुत सारी होती हैं, गलत फहमियां लोगों की होती हैं। हम कभी नहीं बोलते उलमा की नहीं मानना, लेकिन इस आयत को सही ढंग से समझना भी जरूरी है, वाकई इस आयत में क्या बात है। अब पॉइंट नंबर एक, अब याद रखो, आप मैं पूछूंगा आपस, पॉइंट नंबर एक, इसमें अतीउ का लफ्ज दिख रहा है आप लोग, जिसको पढ़ना आता है समझते हैं, अतीउ का लफ्ज कितनी बार आया, और जिक्र किसके हुक्म की मानने का किया गया, ऐसा क्यों, तीन का हुक्म मानना है और फरमा बरदारी करो का लफ्ज कितनी मर्तबा है, ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से कि अच्छा किसके किसके साथ अतीउ का लफ्ज आ रहा है, और किसके साथ गायब हो गया। तो इससे क्या बात समझ में आती है, इनके लिए अतीउल्लाह व रसूलहू उलिल अम्र मिनकुम अगर कहा जाता तो क्या जुमला गलत होता। बात सही है, मानना तीनों की है ना, लेकिन अल्लाह का जो कलाम है, अल्लाह के कलाम में अजीब बलागत होती है जिसमें बात में बहुत सारे उसूल सामने आते हैं। यहां पर अल्लाह ने अल्लाह के साथ अतीउ का लफ्ज रखा, उसको दोहराया रसूल के साथ में, सही है, लेकिन छोड़ दिया किधर, इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसलिए कि इससे पहले की जो आयत हमने देखे उसमें क्या बात हमने सीखी थी, उसमें क्या बात सीखी थी, अल्लाह के रसूल का हुक्म चाहे कुरान में वो बात मौजूद ना हो वो भी मानना। तो कुरान का हुक्म मानना यानी अल्लाह का हुक्म मानना भी लाजिम है और रसूल का मानना भी। रसूल को नहीं बोलते आपकी बात कुरान में नहीं हम नहीं मानते, बोल सकते हैं ऐसा, या रसूल को बोल सकते हैं आपकी दलील बताओ, बोल सकते हैं। तो अल्लाह की बात खुद दलील है और मानना जरूरी है, रसूल की बात खुद दलील है, रसूल की बात भी मानना लाजिम है, लेकिन बादशाह की बात दलील है खुद, कोई हाकिम कोई आलिम मैं बोल रहा ना ऐसे कर सकते हैं नहीं, बस तो हर आलिम अगर ऐसा बोलने लगे, दो आलिम आ गए सामने अभी, अब एक आलिम बोल रहा है पाता दे मैं बोल रहा, दूसरा आलिम बोल रहा मत दे मैं बोल रहा, तब ये भी क्या है उलुल अम्र में से है आलिम है और वो भी आलिम है, तो किसकी मानेंगे। तो ये खुद दलील होते तो बात और होती, ये खुद दलील है नहीं है, इसलिए अल्लाह ने पहले लेवल पे बता दिया अल्लाह। इसलिए इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में कहते हैं तीसरी जगह अल्लाह ने छोड़ दिया इसलिए कि किसी भी उलुल अम्र की फरमा बरदारी खुद हुज्जत नहीं है, वो मोहताज है दलील की, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बात क्या है खुद दलील है, बोले तो मानना पड़ता, दलील पूछने का रहता नहीं, लेकिन इनकी बात दलील के ताबे, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती। अब तीनों के बारे में एक सवाल, अल्लाह की बात के बारे में बोल सकते सही भी हो सकती गलत भी हो सकती, कुफ्र हो जाएगा, रसूल के बारे में और बादशाह के बारे में आलिम के बारे में, समझ में आया। तो इसके लिए अतीव यहां पर जिक्र नहीं किया, इसकी बात सही भी हो सकती गलत भी हो सकती है, तो मानो ही ऐसा होता तो सही होती तो ऐसा होता, लेकिन हमेशा सही होती है नहीं, इसीलिए इख्तलाफ इनमें हो सकता है कि एक आलिम एक बात बोल रहा है दूसरा आलिम दूसरी बात बोल रहा है, तो आगे का हिस्सा इस मसले को हल करता है। फइन तनाज़अतुम फिशे, फिर तुम में अगर आपस में इख्तलाफ हो जाए तो उस इख्तलाफ के फैसले के लिए अब तीन के पास जाना पड़ेगा कि दो के पास, तो तीसरे को यहां पे क्या कर दिया अभी गायब कर दिया, पहले से पहले हिस्से में आतियो उसको नहीं दिया गया, इसका मुस्तकिल हक नहीं है कि इसकी मानी जाए, ये तो पहुंचाने वाला है, इसका काम शरीयत बनाना नहीं है शरीयत बताना है, गलत बोलेगा तो नहीं मानना है इसे। दूसरा अगर दो खड़े हो जाएं एक साथ, दो आलिम खड़े हो जाएं और दोनों अलग अलग बात बोलें तो ऐसी सूरत में किसकी बात चलेगी, आलिम की बात खुद दलील होगी, वैसे भी दलील नहीं थी, अब तो और भी ज्यादा जरूरी होगा कि फैसला किस बुनियाद पे किया जाए, अगर तुमने आपस में इख्तलाफ हो जाए तो उसको लौटाओ किधर अल्लाह, और मालूम है कि अब यहां पर फैसले का हक आलिम को है नहीं, अल्लाह उसके रसूल की बात की रोशनी में जिसकी बात सही होगी वो सही वरना वो बात गलत, समझ में आ रहा है। तो अगर तुम में आपस में इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह उसके रसूल के पास मसले को पेश करो, कब, अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो। अब अगर आदमी वाकई अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, अल्लाह देख रहा है आखिरत में जवाब देना है हिसाब लेगा ये डर रखता है, तो अल्लाह और उसके रसूल की बजाय कहीं और नहीं जाएगा और इख्तलाफ तू तेरा कर मैं मेरा करता, ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वाकई बोलेगा देखो सही क्या है, किताब और सुन्नत की रोशनी में, अल्लाह उसके रसूल की बात की रोशनी में सही क्या देखो। तो फैसले की बुनियाद क्या है आपसी इख्तिलाफ में? किताब और सुन्नत, अल्लाह और उसके रसूल की बात, और खुद दलील के तौर पर किसका हुक्म है? आलिमों की मानना चाहिए कि नहीं? लेकिन किसके ताबे होकर? हाँ, तो अल्लाह और उसके रसूल के बाद आलिम को रखा है कि पहले नंबर एक पे। पब्लिक यह आया दलील में पेश करती है, ऐसा पेश करती गोया कि इसमें इसके सिवा कुछ है ही नहीं, इतनी आयत है क्या? वही अम्र मिनकुम, इतनी आयत है? अल्लाह की मानो, रसूल की मानो, नंबर तीन पे उसको रखा है, वो भी अतीउ छीन के उसको रखा है वहां पे, और अगले हिस्से में वो भी छीना कि कहा कि अगर इनमें झगड़ा हो जाए तो फिर इनका अपना इख्तियार भी खत्म, दोनों भी सही बोल नहीं सकते, देखना पड़ेगा कौन सही है किताब और सुन्नत की रोशनी में। और डरा यहां पे, अल्लाह आखिरत पर ईमान रखते हो तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटाओ, ये मत बोलो अरे ये भी सही है वो भी सही है। आज क्या बोल रहे हैं लोग? चारों अलग है लेकिन चारों सही है, फिर चार में हनफी में दो अलग है वो भी सही है, फिक्ह में चार और अकीदे में दो, टोटल कितने हुए? छह। अकीदे में दो कौन कौन? अशारी और मातुरीदी, ये दो जमातें। लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं, आयत पेश करते हैं, यौम नद्उ कुल्ल अनासिन बि इमामिहिम, क्या आयत है वो? यौम नद्उ कुल्ल अनासिन बि इमामिहिम, कयामत के दिन, वो दिन यानी कयामत के दिन, नद्उ हम पुकारेंगे बुलाएंगे, कुल्ला उनासिन हर इंसान को, लोगों को, कौमों को, बे इमामी हिम उनके इमाम के साथ। तो लोगों तो देखो ये आयत कुरान में इमाम के बारे में मिल गई, कितनी अच्छी आयत है, इस बनी इसराइल में कि हम हर कौम को, लोगों को उनके किसके साथ बुलाएंगे? तो तुम्हारा इमाम नहीं है तो तुम लोग किसके साथ आओगे? हमारे पास तो इमाम है, लोग कहते ना हमारे पास इमाम है। जवाब नंबर एक, हमारे पास भी इमाम है लेकिन वो तुम्हारे इमाम का इमाम है, कौन है वो? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि सारे इमामों के इमाम, नबियों के इमाम कौन है? तो ठीक है, जो जिसने जिसको इमाम बनाया उसके पीछे आएगा वो, तो हमको टेंशन नहीं है कि बगैर इमाम के तो नहीं रहेंगे, एक इमाम है। नंबर दो, इस आयत के तहत सवाल ही है कि पूछा जाए आप अकीदे में कौन है? मातुरीदी है, और फिक्ह में क्या है? हनफी है। तो आपके अकीदे में इमाम कौन है? अबू मंसूर मातुरीदी है, मोहम्मद इब्ने महमूद इब्ने मोहम्मद अबू मंसूर मातुरीदी। तो अबू मंसूर मातुरीदी आपके अकीदे में हनफी आज कौन है मालूम है? आप नहीं मालूम बहुत लोगों को कि आज हनफी हजरात जो हैं अकीदे में क्या हैं? मातुरीदी। अकीदे में इनके इमाम कौन हैं? अबू मंसूर मातुरीदी, अबू मंसूर मातुरीदी, कुछ कुछ नाम याद रखना चाहिए, अबू मंसूर मातुरीदी। और फिक्ह में कौन है इमाम? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इमाम के साथ बुलाया जाएगा तो कौन से इमाम के पीछे आएंगे, अकीदे वाले के या फिक्ह वाले के? कौन से इमाम के पीछे आएंगे? तो हमारा अकीदे में इमाम कौन है? और फिक्ह में कह में भी बोलो, दीन के सारे मामलात में कौन इमाम है? बस टेंशन नहीं हो। लेकिन आपने चूंकि किसी दूसरे के बारे में कहा कि नहीं इनको इमाम बनाना पड़ेगा, इनके पीछे आएंगे, अब मसला आपके लिए आ गया कि आप अकीदे की लाइन जब लगेंगे तो वहां जाएंगे, फिक्ह की लगेंगे तो यहां आएंगे, तो कैसा करेंगे? और एक साथ दोनों लाइन में ठहर सकते क्या? ऐसा कैसा? तो इस तरह का गलत जवाब आदमी के क्या होता है? गले का हंदा बन जाता है। तो ये आयत एक्चुअली उस बारे में है ही नहीं। यहां इमाम से मुराद क्या है? किताब, कि हम हर इंसान को उसकी किताब यानी कौन सी किताब, आमाल नामा, उसके साथ बुलाएंगे। दलील सूरह यासीन में है, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हर चीज को हमने एक इमाम मुबीन में लिख रखा है। यानी इमाम, इमाम से मुराद क्या है? किताब है। अरबी जबान नहीं जानने की मुसीबत, तो अरबी में इमाम का लफ्ज किसके लिए आता है? किताब के लिए भी आता है। तो ये समझ में आता है कि हर एक को उसकी किताब के साथ बुलाया जाएगा, और ये कुरान में कई जगहों पर मौजूद है। तो बहरहाल इस आयत से आपने क्या क्या बातें सीखी? नंबर एक, इस आयत में गौर करने की चीजें क्या हैं? अब इसको याद रखिए, मैं पूछूंगा। नंबर एक, इसमें कितनों का जिक्र है? किसका? रसूल और उलुल अम्र से मुराद कौन है? कौन कौन है? उलमा और हाकिम, हाकिम गवर्नर खलीफा जो भी हैं। फिर इस आयत में तीनों की मानना जरूरी है नहीं है? मानना हो, जब अल्लाह ने कहा मानो तो मानना है कि नहीं मानना है? लेकिन फर्क क्या है? दोनों की तात अल्लाह और उसके रसूल की तात क्या है? मुस्तकिलन है। ये लफ्ज याद रखिए, क्या है? मुस्तकिलन, यानी वो खुद दलील है, मानना ही पड़ेगा। क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इनको क्वेश्चन कर सकते हैं? कहां से बोल रहे बताओ, बोल सकते कि नहीं? गलत है तो नहीं मानेंगे, सही है तो मानेंगे। ये बात अल्लाह से कह सकते हैं? अल्लाह गलत रहेंगे तो नहीं मानूंगा, तो बोल सकते हैं ऐसा? सीधा जानना में जाएगा, अल्लाह कभी गलत हुक्म देता है रसूल? लेकिन किसी आलिम से गलती हो सकती है, किसी काजी का फैसला, जज का फैसला गलत हो सकता है, किसी बादशाह का हुक्म गलत हो सकता है, तो उसके लिए अतीउ का लफ्ज मुस्तकिल आया नहीं। उसके बाद वाला हिस्से में क्या बताया गया? अगर आपस में क्या हो, इख्तिलाफ हो, तो अब फैसला कौन करेगा? अब यहां से उलुल अम्र को टोटली क्या कर दिया गया? गायब कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उलुल अम्र में भी इख्तलाफ होता है, दो आलिमों में इख्तलाफ होता कि नहीं होता? तो ऐसा अगर कोई आदमी बोलता है कि चारों अपनी जगह बरक है, चारों से, और बाद वक्त आदमी जिद पे आता है तो क्या क्या नहीं बोलता है। मसलन एक आदमी है, पूछा कि फुलां चीज फुलां के नजदीक जायज है, फुलां के नजदीक हराम है। एक इमाम के नजदीक एक चीज हराम, दूसरे के नजदीक वो चीज जायज नहीं, जरूरी। मसलन इमाम के पीछे कुरान पढ़ना नमाज में, किरत करना, एक मिसाल दे रहा हूं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक क्या है? जायज है कि नाजायज है? नाजायज है, जायज नहीं। इमाम के पीछे नमाज में किरत कर सकते हैं? नहीं। और इमाम शाफी के नजदीक लाजिम, कंपलसरी। अब हराम है कि कंपलसरी, कितना एकदम? बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इमामों में फुरुआत में इख्तिलाफ है, फुरुआत में है, और अफजल गैर अफजल का इख्तिलाफ है, ज्यादा टेंशन वाला इख्तिलाफ इनमें, इससे ज्यादा टेंशन क्या होगा? नमाज, एक आदमी नमाज में एक कह रहा है कि ये जायज नहीं है, दूसरा कह रहा है कि नमाज में क्या है? लाजिम है। तो दोनों में कितना बड़ा फर्क हो गया। तो अब क्या कहेंगे, किसी से पूछेंगे कि इमाम के पीछे किरत करना कैसा है? अब उसको सवाल के जवाब में एक सवाल पूछना पड़ता है, क्या? आप हनफी की छाप हुई है? बोले हनफी है। बोले जायज नहीं आपकी, भूल गया सॉरी, मैं शाफी हूं। हाँ, आपको पढ़ना चाहिए। यानी थोड़ी देर पहले मैं सिर्फ हनफी बोल दिया तो नाजायज हो गया, और शाफी बोल दिया तो क्या हो गया? लाजिम। अच्छा, मैंने हनफी ने शाफी, वो मुसलमान है, क्या करूं? सब करूं कि नहीं करूं? थोड़ा गंभीर मसला है। अगर मैं हनफी हूं, शाफी हूं, सिर्फ मुसलमान हूं, तो क्या मतलब होती कि नहीं नमाज? करे कि नहीं करे, क्या करे? यानी एक लेवल से एक मसला या तो हलाल हो जाता है या तो हराम हो जाता है। यानी लेवल कितना पावरफुल है कि एक चीज जो है उसका शरीर हुक्म बदल देता है एक लेवल, ऐसा है, कैसा हो सकता है ऐसा। तो आलिम बजाय इसके कि कुरान और सुन्नत का हुक्म बयान करे, वो लोगों से पूछ के उनके हिसाब का मसला बयान करे, सही है। फइन तनाज़, इख्तलाफ में किसके मुताबिक फैसला देना पड़ेगा, लेवल के हिसाब से नहीं। क्या आपका लेवल बोला आपको फतवा देते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो आज इसलिए जरूरी है कि हम किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करें। अभी से एक बात ही मालूम होती है कि हर दौर में, देखिए याद रखिए इस बात को, हर दौर में क्या मुसलमानों में इख्तलाफ होगा क्या नहीं होगा, होगा, हर दौर में होगा इख्तलाफ। ऐसा पूछे तो पब्लिक थोड़ा सोचती कि क्या पूछते, पकड़ रहे क्या, नहीं होगा, हर दौर में इख्तलाफ होगा। तो अब हर दौर के लिए रुजू किसकी तरफ होना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अब इश्तिहाद का दरवाजा किधर जाना पड़ेगा, अभी इमामों के पास, इमामों ने जो दे दिए बस उतना ही इश्तिहाद का दरवाजा क्या हो गया। तो हर दौर में रुजू किधर करना पड़ेगा, क्यों, इसलिए कि हर दौर में क्या होगा, इससे ज्यादा इख्तलाफ है क्या, कितनी फिरके बढ़ते जा रहे, नए हर दिन एक नया कोई तो भी आता। अभी एक फोन आया मेरे को औरंगाबाद में, कोई दावा किया है कि मैं महदी हूं, अब वो एक देखिए कि टोटल में और इजाफा हो गया, बास्केट में एक और एक नया सड़ा हुआ फल, कुछ ना कुछ नया हर दिन कोई ना कोई आके दावा कर रहा है। मालूम नहीं कल को कोई खड़ा होकर बोले मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं, नऊज़ बिल्लाह, कोई भी बोल सकता है। तो ऐसे कई लोग हैं उम्मत में इख्तलाफात, नए नए अफकार, नई नई बातें रोजाना कोई ना कोई आदमी ला रहा है और मुसलमानों में क्या हो रहा है, आपस में इख्तलाफ। तो हर दौर में जब इख्तलाफ होगा तो उसमें रुजू भी किधर करना पड़ेगा, इख्तलाफ की सूरत में रुजू किताब और सुन्नत की तरफ करना पड़ेगा। यानी उसका फैसला किसकी रोशनी में मानेंगे, किसकी बात सही, जिसकी बात किताब और सुन्नत के मुताबिक। अब इसमें एक बात ये भी याद रखी है, अल्लाह ताला ने यहां पर फरमाया अगर तुम में किसी चीज में इख्तलाफ हो जाए तो इख्तलाफ होते ही गुनाहगार होंगे या नहीं, समझ में आ रही बात, तुम्हें इख्तलाफ होगा, हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो कभी जानने नहीं जानने की वजह से, समझने नहीं समझने की वजह से मुसलमानों में क्या हो सकता है, ये कयामत तक होता रहेगा। लेकिन इख्तलाफ होने के बाद क्या करना है, अल्लाह ने हमको बता दिया कि इख्तलाफ होने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा उसके हल के लिए। क्या अल्लाह ने कहा तुम में इख्तलाफ हो जाए तो तुम कहो हर एक बरहक है, अल्लाह ने कहा, क्या कहा अल्लाह ने, अगर वाकई ईमान वाले हैं तो क्या करो, अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटाओ फैसले के लिए, देखो क्या सही क्या गलत है, ये मत बोलो चारों बरहक है, ये मत बोलो। तो यहां पर मालूम हुआ कि यानी चारों बरहक है, मैं देखिए चार, अब इसमें कोई गलत फहमी ना पड़े, चारों इमाम बरहक है कि नहीं, बर हक का मतलब क्या होता है, हक पर, चार इमाम हक पर थे कि नहीं थे, चारों सीधे रास्ते पे थे क्या गलत रास्ते पे थे। लेकिन किसी मसले में अगर किसी आलिम से मिस्टेक हो जाए तो क्या वो गुमराह हो जाता है, नहीं हो जाता है। हदीस में क्या है, अगर किसी हाकिम से किसी मसले में गलती हो जाए तो उसको कितने अजर मिलते हैं, और अगर सही फतवा दे दे तो दोनों सूरतों में उसको क्या मिलता है, नेकी मिलती है कि नहीं मिलती, अजर मिलता है, तो गुमराह होता है वो। तो मालूम हुआ कि हिदायत पर रहने के बावजूद, नेकी लेने के बावजूद मिस्टेक हो सकती है, तो मिस्टेक को लेना है कि छोड़ना है। तो हम ये कहते हैं चारों इमाम बरहक हैं, लेकिन सारे मसले बरहक हैं क्या, मसले में कोई सही है और कोई गलत है, कोई सवाब है कोई खता है, तो हमको सवाब लेना है और खता को, और किसी की शान में गुस्ताखी करना नहीं है, इसलिए कि उनको उनका अजर इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। लेकिन उनकी वो खता हम दीन बनाएंगे, खता को दीन बनाया जाएगा, यानी दीन में खता भी रहती है, ऐसा है क्या? खता दीन नहीं हो सकती, समझ में आया? बाद लोग कहते हैं ठीक है, जब उनको खता पे एक लॉजिक बहुत लगाती है, और उम्मत क्या होती है, भोली भाली उम्मत है, जरा तहकी की बात पेश किए तो पब्लिक इतना डीप नहीं जाना, बहुत ज्यादा इल्म नहीं, और जब साबित करने पे आती तो कहां कहां से सोच के जंगल में से चारा चुन के लाती मालूम है। क्या बोलते हैं लोग, देखो लॉजिक के हदीस में क्या है कि इमाम अगर इश्तिहाद करता है और उसको इश्तिहाद सही निकलता है, कितने अजर मिलेंगे? तीन के दो, दो, और अगर गलती हो जाए तो दोनों सूरतों में क्या मिल रहा है? तो हम अगर गलत भी रहेंगे तो एक अजर हमको मिलेगा ना, दो तुम लो। पब्लिक क्या बोलती है, हम तकलीफ कर रहे हैं ना, हमारे इमाम को एक अजर मिला कि नहीं मिला, हम भी उस पर अमल कर रहे हैं, हमको भी कितने मिलेंगे? कम से कम एक तो मिलेगा, गलत मत बोलो हमको, तुम दो लो, हमको एक बस हुआ। इसका क्या जवाब है? क्या रहा टेंशन आप लोगों को भी? यार ये भी बात सोचे नहीं कभी, अच्छी तो अजर उनको मिल रहा है, इस पे भी वाजे नहीं हुई तो हाँ। ये हदीस किसके बारे में? मुश्तहिद के लिए, क्योंकि जो कोशिश कर रहा है एक अजर उसको काय का मिल रहा है और दो काय के मिले, बताइए दो अजर काय के मिल रहे हैं? एक कोशिश का, दूसरा सही पहुंचने का, और अगर गलती हो जाए तो कौन सा कैंसिल हो गया? सही पहुंचने का अजर मिला, और अजर कौन सा मिला? तो इसको कौन सा मिलने वाला है? कोशिश किया कि समझ में आ रही बात, यानी इसने तो कोशिश भी नहीं किया, उसको जो एक अजर मिला है वो काय का मिला है उसकी, तो ये कोशिश किया नहीं और मुफ्त में मिल सकता है इसको, तो इसके लिए वादा नहीं है, क्योंकि इसने इश्तिहाद किया है नहीं किया है। तो दूसरी बात ये कि इमाम से जो खता हुई है तो क्या वह जानबूझ के हुई है? नहीं मालूम हुई तो हुई, तो अगर जानबूझ के कोई अगर आदमी खता करे तो क्योंकि कुरान में क्या फरमाया अल्लाह ने, देखिए लैस अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, लैस अलैकुम जुनाहुन, जुनाह गुना, जुनाह यानी गुना, तुम पर कोई गुना नहीं, किस बारे में? फी मा अख्तअतुम बिही, जिसमें तुमसे खता हो जाए, वलाकिन लेकिन, मा तअम्मदत, तअम्मदा का मतलब होता है जानते बूझते करना, वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, लेकिन तुम्हारे दिल जानते बूझते सोच समझ के जो करें उसमें क्या है? तो एक आदमी को मालूम नहीं ये गुनाह है, आदमी गलती से हो गया उससे और मिस्टेक हो गई जजमेंट में, तो इसमें जानबूझ के उसने गलती की नियत किया था, लेकिन जाना उसने कि ये मिस्टेक है और फिर भी कर रहा है, तो ये जानबूझ के किया कि नहीं किया, तो इसमें गुनाह होगा। एक आदमी मिसाल के तौर पर अत्तहियात नमाज में भूल गया, खड़ा हो गया दूसरे रकत में, गुनाह है उस पर, उसकी भरपाई क्या है? और एक आदमी जानबूझ के छोड़ दे अत्तहियात तो गुनाहगार होगा? होगा, यह आदमी गुनाहगार होगा। क्यों? इसलिए कि पहली सूरत में उससे सहू हुआ था, भूल हो गई, याद नहीं रहा उसको, और दूसरी सूरत में क्या हो गया? एक आदमी है, चार रकत पढ़ा या तीन पढ़ा, कंफ्यूज हो गया और ऐसी सूरत में उसने सोचा कि शायद तीन ही पढ़ा मैंने, और पढ़ा कितना था? चार। तो उसने और एक पढ़ा, कितनी हो गई? पांच। तो ये आदमी गुनाहगार होगा, उसकी भरपाई क्या है? सत्य ऐसा। लेकिन एक आदमी है, चार पढ़ा, बोले तो एक और पढ़ी अल्लाह के लिए, अल्लाह एक बढ़ा दिया, कितनी पढ़ा? तो बढ़ा के क्या हो गया? तो इसमें क्यों गुनाहगार हुआ? उसने भी पांच पढ़ा, इसने भी पांच पढ़ा, फर्क क्या है? हाँ, जानबूझ के किया तो क्या हो गया? समझ में आया फर्क? कि एक आदमी से खता हो जाए, नहीं समझ में आया और खता हो गई, तो ये गुनाहगार होता है? नहीं। लेकिन जो आदमी जानते बूझते करे वो गुनाहगार होता है। तो इमामों के जो फतवे आज सामने हैं, उनमें मालूम हो कि ये कुरान और सुन्नत से टकराने वाली बात है, फिर भी आदमी उसके पीछे चले, जायज है? क्योंकि जानबूझ के पीछे गलती पर अमल कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये इस आयत से कई बातें सामने आती हैं, इन सारी बातों को याद रखना चाहिए ताकि हम अपनी दलील को वजाहत के साथ समझा सकें। तो ये अगली मर्तबा मैं पूछूंगा इंशाल्लाह कि इस आयत में हमने क्या क्या सीखा। तो पॉइंट्स लिख के याद रखें उसको, और ये बहुत अहम आयत है, और आमतौर से आपको सबसे पहले ये आयत से साबिका पेश आएगा मसले तकलीद में, तो इसको आप समझें अच्छी तरह से, ठीक है? इस बारे में मजीद तफसील इंशाल्लाह अगले दस में हम देखेंगे।